दूसरा धार्मिक दशा। यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जावा, सुमात्रा, वाली, मलाया आदि दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रदेशों की प्राचीन समय में ठीक वही दशा थी जो भारत की थी। भारत के जिन उपनिवेशकों ने इन प्रदेशों में जाकर अपने राज स्थापित किए, वे अपने धर्म को भी साथ ले गए और वहां के पुराने निवासियों को भी उन्होंने अपने धर्म का अनुयायी बना लिया। अंत प्राचीन समय में भारत के धर्म में याज्ञिक कर्मकांड को प्रधान स्थान प्राप्त था और दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेशों में भी यज्ञ प्रधान धर्म का प्रचार था। बोर्नियो से राजा मूल वर्मा के यूपों यज्ञ स्तंभों पर उत्कीर्ण जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें बहु सुवर्ण सदृश यज्ञों के अनुष्ठान तथा ब्राह्मणों को दी गई दान दक्षिणा का वर्णन है। पौराणिक धर्म। जैसे भारत में यज्ञ प्रधान वैदिक धर्म का स्थान उस पौराणिक धर्म ने ले लिया था जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं की पूजा की जाती थी और उनकी मूर्तियों को मंदिरों में प्रतिष्ठापित किया जाता था, वैसे ही दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध राज्यों में भी हुआ। 8वीं सदी के प्रारंभ तक इन राज्यों में पौराणिक हिंदू धर्म भली भांति प्रचारित हो चुका था और पुराने यज्ञिक कर्मकांड का स्थान मूर्ति पूजा ने ले लिया था। विविध देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उन्हें मंदिरों में प्रतिष्ठापित करना और उनकी पूजा करना अब वहां के धर्म का प्रधान अंग बन गया था। देवी देवताओं में प्रधान स्थान महेश का था। उसके दो रूप थे, शिव और महाकाल। शिव उसका कल्याणकारी रूप था और महाकाल रौद्र रूप। शिव या महादेव या भैरवी की शक्ति देवी पार्वती, उमा या महादेवी थी और महाकाल या भैरवी की महाकाली या भैरवी। देवी का एक रूप दुर्गा भी था जिस रूप में उसने महिषासुर का मर्दन किया था। शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकीय थे। इन सब की मूर्तियां जावा में अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं, जिससे वहां शैव धर्म का प्रचलन प्रमाणित होता है। लिंग। शिवलिंग के रूप में वहां भी भगवान शिव की पूजा की जाती थी। बहुत से शिवलिंग भी वहां मिले हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के मूल निवासियों में लिंग की पूजा प्रचलित थी और भारतीय उपनिवेशकों ने इसे उन्हीं से ग्रहण किया था, पर सिंधु घाटी की सभ्यता में भी लिंग पूजा का संकेत मिलता है और पौराणिक धर्म में इसका प्रवेश उस समय से पहले ही हो गया था जबकि भारतीय उपनिवेशकों ने जावा आदि में अपने राज स्थापित किए थे। अतः शैव धर्म के प्रवेश के साथ साथ ही वहां लिंग पूजा का भी सूत्रपात हो गया होगा। जावा में भी गणेश की मूर्ति को गजमुखी बनाया गया जाता था और उनकी पूजा विघ्न विनाशक देवता के रूप में की जाती थी। महिषासुर मर्दिनी देवी की जो मूर्तियां जावा में मिली हैं, उनमें उनके 6, 8, 10 या 12 हाथ बनाए गए हैं। महाकाली की मूर्ति को शव के ऊपर बैठे हुए बनाया गया है। उसके एक हाथ में त्रिशूल होता है और दूसरे हाथ में खप्पर। जावा में कतिपय ऐसी शिव मूर्तियां भी मिली हैं जो अर्धनारीश्वर के रूप में है। इनमें दायां भाग शिव का है और बायां पार्वती या उमा का। शिव के अतिरिक्त विष्णु और ब्रह्मा की पूजा भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में प्रचलित थी। यद्यपि इन देवताओं ने वह स्थान प्राप्त नहीं किया था जो कि शिव की था। विष्णु की मूर्तियां चतुर्भुज रूप से बनाई गई हैं और उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कराए गए हैं। विष्णु की ऐसी मूर्तियां भी वहां मिली हैं जिनमें उन्हें शेष नाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। विष्णु की शक्ति श्री या लक्ष्मी थी। लक्ष्मी की भी 4 भुजाएं बनाई गई हैं और उनमें उन्हें चमर, माला आदि लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। विष्णु के वाहन गरुड़ और कार्तिकीय, स्कंद के वाहन मयूर की मूर्तियां भी जावा में मिली हैं। इन द्वीपों के निवासी भारत के उन पौराणिक मान्यताओं में भी आस्था रखते थे जिनमें कृष्ण, राम, मत्स्य, वराह और नरसिंह को अवतारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनकी मूर्तियां भी वहां से उपलब्ध हुई हैं। एक मूर्ति में जावा के प्रतापी राजा एलंग को वराह अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत के इतिहास में मलेच्छों से उद्दीज्यमान पृथ्वी की पुत्रवंशी राजा चंद्रगुप्त ने उसी प्रकार से उद्धार किया था जैसे कि प्रलयगत पृथ्वी का वराह अवतार ग्रहण कर भगवान ने किया था। जो कार्य भारत में चंद्रगुप्त ने किया वही जावा में एलंग द्वारा किया गया था, इसीलिए उसे भी वराह अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रह्मा की बहुत कम मूर्तियां मिली हैं। प्राचीन काल में भारत में भी प्रधानतया शिव और विष्णु की ही पूजा की जाती थी। वही दशा जावा आदि में भी थी। वहां ब्रह्मा की जो मूर्तियां मिली हैं उनमें उन्हें चतुरानन रूप में प्रस्तुत किया गया है और उन्हें हंस पर आरूढ़ तथा माला, चमर, कमल और कमंडल लिए हुए दिखाया गया है। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती मानी जाती थी। उनका वाहन हंस था। हंस पर आरूढ़ देवी सरस्वती की भी कुछ मूर्तियां दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रदेशों से प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति की भी वहां पूजा की जाती थी। इनमें बीच में शिव का मुख बनाया गया है और उनके दोनों हाथों और ब्रह्मा तथा विष्णु का। पौराणिक हिंदू धर्म के यम, वरुण, अग्नि, इंद्र, कुबेर और सूर्य आदि अन्य देवताओं की पूजा भी दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित थी और इनकी मूर्तियां भी वहां मिली हैं। सात अश्वों द्वारा खींचे जाते हुए रथ पर आरूढ़ सूर्य या पुष्प बाण लिए हुए कामदेव की अनेक कलात्मक मूर्तियां भी जावा आदि में बनाई गई हैं। वहां एक अन्य प्रकार की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जिन्हें भटार गुरु की मूर्तियां कहा जाता है। ये खड़े रूप में है। इनका पेट बहुत बढ़ा हुआ है। दाढ़ी तथा मूछें नोकीली हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, कुंभ, चमर तथा माला है। कुछ विद्वानों के मत में ये महायोगी शिव की मूर्तियां हैं और कुछ इन्हें कुंभोद्भव अगस्त की मूर्तियां मानते हैं। जावा के अनेक अभिलेखों से भी वहां अगस्त की पूजा का संकेत मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगस्त ने समुद्र को सुखाकर मनुष्यों के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इस दशा में समुद्र पार के प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले भारतीय आदि अगस्त की पूजा करते हों तो यह स्वाभाविक ही था। इस क्षेत्र की मूर्तियां प्रधानतया पत्थर की हैं, पर ऐसी मूर्तियां भी अच्छी बड़ी संख्या में हैं जिनके निर्माण के लिए पीतल, कांश सदृश धातुओं का प्रयोग किया गया है। भारत के पौराणिक हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसी देवी देवता हों जिसकी मूर्ति दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा आदि द्वीपों में न पाई गई हो। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन समय में इन द्वीपों में पौराणिक धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार रह चुका है। वहां ऐसा साहित्य भी विकसित हुआ जो भारत के धार्मिक साहित्य पर आधारित था। जावा के इस पुराने साहित्य में विविध देवी देवताओं की वैसी ही कथाएं पाई जाती हैं जैसा कि भारत की पुराणों में है। बौद्ध धर्म। 5वीं सदी के प्रारंभ में चीनी यात्री फाययान भारत से वापस जाते हुए जब जावा गया था तो कहां पौराणिक धर्म का प्रचार था? गुण वर्मा द्वारा वहां किस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात किया गया यह पहले लिखा जा चुका है। यद्यपि गुण वर्मा के प्रभाव से जावा की राजमाता तथा राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर अभी वह जावा का प्रधान धर्म नहीं बना था। पौराणिक हिंदू धर्म वहां फलता फूलता रहा, यद्यपि उसके साथ साथ बौद्ध धर्म का भी वहां प्रचार होता रहा। शुरू में जावा तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों में बौद्धों के हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिवादी निकाय का प्रचार हुआ था, पर 8वीं सदी में वहां महायान संप्रदाय का प्रवेश हुआ और उसने शीघ्र ही वहां से हीनयान का अंत कर दिया। अब इन द्वीपों में पौराणिक हिंदू धर्म और महायानी बौद्ध धर्म के साथ साथ कायम रहे और उनमें विरोध तथा विद्वेष के कोई संकेत वहां नहीं मिलते। शैलेंद्र राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लिगोर मलाया के एक अभिलेख के अनुसार श्री विजय के राजा के आदेश से राजस्थवीर राजगुरु जयंत के 3 बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया गया था। शैलेंद्र राजा श्रीबाल पुत्र देव ने नालंदा भारत में भी एक विहार बनवाया था जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 8वीं सदी में जावा पर भी शैलेंद्र राजाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्योंकि ये राजा बौद्ध थे अतः इनके शासन काल में जावा में भी इस धर्म का उत्कर्ष हुआ और प्रतापी शैलेंद्र सम्राटों के संरक्षण में इस धर्म में वहां प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। 8वीं और 9वीं सदियों में जावा में अनेक विशाल बौद्ध मंदिरों व चैत्यों का निर्माण हुआ जिनमें बरोबदूर का चैत्य सबसे अधिक महत्व का है। इसके अतिरिक्त चंडी कालसन, चंडी सरी और चंडी सेबू आदि के मंदिर भी इस काल में बने। इस अध्याय के अगले प्रकरण में इनका परिचय दिया जाएगा। शैलेंद्र राजाओं की राजधानी श्री विजय सुमात्रा में थी। यह नगरी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र थी और चीन के बौद्ध भारत आते हुए और भारत के बौद्ध चीन जाते हुए प्रायः वहां ठहरा करते थे। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में इत्सिंग ने वहां अनेक वर्ष बिताए थे और वहां रहकर संस्कृत भाषा व बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। इसी समय के लगभग कांची के निवासी और नालंदा के आचार्य धर्मपाल ने दक्षिण पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र की यात्रा की थी। 11वीं सदी में मगध का प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान अतीश भी वहां गया था। श्री विजय और जावा आदि बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत महत्व प्राप्त कर गए थे। यह इस बात से सूचित होता है कि वहां अनेक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, यद्यपि अब वहां बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से लोप हो चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का ही मुख्य रूप से प्रचार हुआ था। इस संप्रदाय में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और इस प्रयोजन से उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठापित की जाती थी। ये देवी देवता प्रायः उसी प्रकार के थे जैसे कि पौराणिक हिंदू धर्म में थे। महायान में आदि बुद्ध के अतिरिक्त अमिताभ और अमोघ सिद्धि थे। बुद्ध पद को प्राप्त करने के लिए यत्न तथा साधना में तत्पर व्यक्तियों को इस संप्रदाय में बोधिसत्व कहा जाता था। अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणि, मैत्रेय, आकाश गर्भ आदि मुख्य बोधिसत्व थे जिनकी देवताओं के समान पूजा की जाती थी। बोधिसत्व रूपी देवताओं के समान अनेक देवियों ने भी महायान मत में स्थान प्राप्त कर लिया था, जिनमें तारा, प्रज्ञा, पारमिता और श्री महादेवी प्रधान थी। जावा, सुमात्रा आदि में इस महायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था, अतः वहां इन देवी देवताओं की भी अनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। विशेषतया मैत्रेय तथा मंजूश्री, बोधिसत्व और तारा देवी की मूर्तियां वहां अधिक संख्या में मिली हैं। 8वीं सदी से भारत के महायान में एक अन्य संप्रदाय का विकास शुरू हो गया था जिसे वज्रयान कहते हैं। इसमें गुह्य सिद्धियों पर विश्वास किया जाता था और पूजा के लिए तांत्रिक साधनों का उपयोग होता था। भारत के साथ साथ जावा आदि महायान में भी वज्रयानी सिद्धांतों का प्रवेश हुआ और समयांतर में वहां बौद्ध धर्म का प्रधान रूप वही रह गया जिसका प्रतिपादन वज्रयान द्वारा किया जाता था। इस संप्रदाय में तांत्रिक साधना के लिए पंचमकारों, मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग होता था और साथ ही मंत्र शक्ति का प्रयोग कर अनेक विध तांत्रिक अनुष्ठान भी किए जाते थे। सिंहसारी का राजा कृतनगर किस प्रकार पंचमकारों के सेवन तथा तांत्रिक अनुष्ठानों में तत्पर रहता था यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। पौराणिक और बौद्ध धर्मों में समन्वय। दक्षिण पूर्वी एशिया के पुराने धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि धीरे धीरे वहां बौद्ध तथा पौराणिक हिंदू धर्मों में समन्वय हो गया था और उनके देवी देवताओं में अभेद माना जाने लगा था। जिस प्रकार पौराणिक धर्म में विष्णु और शिव में अभेद मानकर हरिहर की संयुक्त मूर्ति बनने लगी थी, वैसे ही जावा में बुद्ध और शिव में अभेद मानकर उनकी भी संयुक्त मूर्तियां बनाई गई थी। जावा आदि में राजा को दैवी मानकर और वहां यह प्रथा थी कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसके स्मृति में शिव या बुद्ध सदृश देवताओं की जो मूर्तियां प्रतिष्ठापित की जाएं उन पर राजा की मुखाकृति की छाप हो। सिंहासरी के राजा विष्णुवर्धन की 1268 ईस्वी में जब मृत्यु हुई तो वलेरी में शिव के रूप में उसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई और जजगू में बुद्ध के रूप में। राजा कृतनगर की मृत्यु 1292 होने पर उसकी अंत्येष्टि क्रिया शिव बुद्ध देवालय में हुई थी, जहां संयुक्त शिव बुद्ध के रूप में उसकी एक सुंदर मूर्ति भी स्थापित की गई थी। उसकी एक मूर्ति भैरव के रूप में भी बनाई गई थी जो आजकल लिडल हॉलैंड में है। सुरबया में ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य की एक मूर्ति है जिसे कृतनगर की मुखाकृति के अनुरूप बताया गया है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण जावा के इतिहास से दिए जा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध तथा पौराणिक हिंदू धर्मों में समन्वय स्थापित हो गया था और उनमें विरोध का कोई कारण नहीं रहा था। इन दोनों धर्मों में समन्वय हो जाने के परिणाम स्वरूप वहां के धर्म ने एक ऐसा रूप प्राप्त कर लिया था जिसे शिव बुद्ध संप्रदाय या शिव मार्ग और बुद्ध मार्ग दोनों कहा जाता था। इसीलिए पर रतोन में राजा कृतनगर को शिव बुद्ध कहा गया है और नागर कृतागम में उसके देहावशान को इस रूप में प्रकट किया गया है कि उसने शिव बुद्ध लोक की प्राप्ति कर ली थी। पौराणिक और बौद्ध धर्मों में अभेद एवं समन्वय हो जाने पर भी दक्षिण पूर्वी एशिया के इन द्वीपों में पूजा तथा कर्मकांड आदि की प्रायः वही विधि प्रचलित रही जो भारत के सनातनी हिंदुओं में थी। मलाया, सुमात्रा, जावा आदि से अब भारतीय धर्मों का लोप हो चुका है और वहां के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया है। पर जावा के पूर्व में बाली नाम का एक छोटा सा द्वीप है जिसमें धर्म की वही परंपरा इस समय भी विद्यमान है जो इस्लाम के प्रचार से पहले जावा आदि सर्वत्र थी। पिछले अध्याय में हम यह लिख चुके हैं कि इस्लाम से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जावा के बहुत से लोग बाली जाकर बस गए थे। इस दशा में बाली में धर्म का जो रूप वर्तमान समय में है उससे यह भलीभांति जाना जा सकता है कि इस्लाम के प्रचार से पूर्व जावा आदि में भी धर्म का क्या रूप था। बाली के धर्म में सूर्य के रूप में शिव की पूजा का प्रमुख स्थान है। इसे सूर्य सेवन कहते हैं और यह पूजा पंदंड पंडितों द्वारा कराई जाती थी। गुह्य सूत्रों में जिन विविध संस्कारों, जात कर्म, मुंडन, नामकरण, विवाह आदि का विधान किया गया है, बाली उनका निष्ठापूर्वक अनुष्ठान किया जाता है और वहां अनेक सामूहिक धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा के लिए विशिष्ट समयों पर तथा पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है। पितरों के श्राद्ध का बाली के धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा और श्राद्ध आदि वेद शास्त्रों के मंत्रों द्वारा किए जाते हैं और महाकाल दुर्गा आदि की पूजा के लिए पशु बलि भी वहां दी जाती है। पूजा की सामग्री में धृत मधु उषा तथा तिलों को प्रयुक्त किया जाता है और पूजा कराने वाले पदंड को दक्षिणा देने की भी वहां प्रथा है। पदंड प्रायः ब्राह्मण वर्ण का होता है और संस्कृत तथा कवि जावा तथा बाली की पुरानी स्थानीय भाषा भाषाओं और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान गुरु से प्राप्त करके ही वह इस पद का अधिकारी बनता है। बाली में गंगा यमुना सरयू सिंधु कावेरी और नर्मदा नाम की नदियां विद्यमान हैं, पर भारत की इन नाम की नदियों के समान वहां की इन नदियों के जल को पवित्र नहीं माना जाता, पर क्योंकि भारत की परंपरा के अनुसार धार्मिक पूजा पाठ के लिए पवित्र नदियों के जल का उपयोग आवश्यक है, अतः बाली की गंगा आदि नदियों के जल को मंत्र पूत कर धार्मिक कृत्यों में उसका उपयोग किया जाता है। बाली में अब तक भी संस्कृत भाषा तथा वेद सूत्र ग्रंथ रामायण महाभारत आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पठन पाठन जारी है। इस्लाम के प्रवेश से पूर्व जावा सुमात्रा मलाया बोर्नियो आदि अन्यत्र धर्म की क्या दशा थी, इसका अनुमान बाली के धर्म से किया जा सकता है। तीसरा, पुरातन अवशेष तथा कला। मलाएशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में जावा ही एक ऐसा द्वीप है जहां प्राचीन मंदिर और चैत इस समय भी विद्यमान है। शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी श्री विजय सुमात्रा में थी और मलाया प्रायद्वीप में भी अनेक समृद्ध भारतीय राज्य प्राचीन समय में विद्यमान थे। इनमें भी बहुत से विशाल मंदिरों और चैत्यों का निर्माण किया गया होगा, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, पर वहाँ के पुराने पौराणिक व बौद्ध धर्मस्थान अब नष्ट हो चुके हैं और उनके खंडहर कहीं कहीं दिखाई देते हैं। पर जावा के प्राचीन मंदिर व चैत्य पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में हैं, यद्यपि वहाँ के निवासी भी अब इस्लाम को अपना चुके हैं। सबसे पूर्व हम इनका परिचय देंगे। दियेंग के मंदिर। मध्य जावा में समुद्र तल से 6500 फीट ऊँचा दियेंग का पठार है जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह समतल पठार 8000 फीट लंबा और 2500 फीट चौड़ा है। इस स्थान पर जावा के सबसे पुराने मंदिर विद्यमान है जिनका निर्माण 7वीं तथा 8वीं सदी में हुआ था। दियेंग के ये मंदिर पांडवों के मंदिर के नाम से विख्यात हैं और इनकी कुल संख्या 8 है। इनमें या इनके समीप जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वे शिव दुर्गा गणेश ब्रह्मा विष्णु आदि पौराणिक देवी देवताओं की हैं। कतिपय मूर्तियों में उनके वाहन भी बनाए गए हैं। दियेंग के इन मंदिरों का वर्णन करते हुए एक यूरोपियन लेखक ने लिखा था कि इस विलक्षण तथा शांत मैदान में भीम का मंदिर बाईं ओर खड़ा है और अर्जुन का मंदिर दाईं ओर। पहाड़ों और आकाश की पृष्ठभूमि में उनके गहरे मटमैले रंग का पृथ्वी के हरे और आकाश के नीले रंग के साथ अद्भुत मेल है। स्वच्छ आकाश के कारण तभी तो वे इतने समीप मालूम होते हैं, मानो उन्हें छुआ जा सके, पर अगले क्षण वे बहुत दूर हो जाते हैं, इतनी दूर कि वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। मैदान के चारों ओर पहाड़ की ढलान तथा चोटी तक घर पुराने ध्वंसावशेष विद्यमान है। यहाँ कुछ पाषाण स्तंभ गड़े हुए हैं। लोक प्रचलित कथानक के अनुसार वहां अर्जुन अपने हाथियों को बांधा करता था। उसके गौवे रात को यहाँ पर एक गुहा में विश्राम किया करती थी। यहाँ कहीं राख की तह पड़ी हुई मिलती है जिससे आग लगाना सूचित होता है। इस राख में कभी कभी सोने की अंगूठियाँ कंकण और अन्य आभूषण मिल जाते हैं। पुराने समय की पुष्करणियाँ दीवारें सीढ़ियाँ और मकानों की नींवें इन मंदिरों के चारों ओर विद्यमान हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी प्राचीन समय में दियेंग पौराणिक धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। यह स्थान जावा के किसी भी राज्य की कभी राजधानी रही होगी नहीं रहा। यह एक तीर्थ स्थान था जहां बहुत से मंदिर विद्यमान थे। दियेंग के मंदिर गुप्तकाल की शैली के हैं। वे परिमाण में विशाल न होकर छोटे आकार के और घन आकृति के हैं। गर्भगृह में केवल एक प्रवेश द्वार है और मंदिर के ऊपर की छत चौरस है जो ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। मंदिरों के अलंकरण अत्यंत सुंदर और कलात्मक हैं। चंडी कालसन शैलेंद्र राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जब उन्होंने जावा को भी अपने अधीन कर लिया तो वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा और शैलेंद्र राजाओं द्वारा वहाँ बहुत से चैत्यों तथा स्तूपों का निर्माण कराया गया। ऐसा सबसे पुराना चैत्य था मंदिर चंडी कालसन का है, जिसके 778 ईस्वी के अभिलेख से यह सूचित होता है कि उसे एक शैलेंद्र राजा ने देवी तारा के लिए बनवाया था। अभिलेख में कालस गांव के बौद्ध संघ को दान में दिए जाने का उल्लेख है, इसीलिए तारा के लिए निर्मित चैत्य या मंदिर का नाम चंडी कालसन पड़ा। जावा में मंदिरों के लिए चंडी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। चीरकाल तक उपेक्षित रहने और विधर्मियों के प्रकोप के कारण इस मंदिर का बहुत सा भाग अब नष्ट हो चुका है, पर जो शेष बचा है वह 8वीं सदी की वास्तुकला तथा धार्मिक दशा का परिज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है। मंदिर एक चौकोर चबूतरे पर खड़ा है जो 12 फीट तक बाहर की ओर निकला हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग भी चौकोर है। उसके प्रधान द्वार के ऊपर विशाल कीर्ति मुख बना है, जिसके मुख से 5 कमल लटक रहे हैं। द्वार पर बहुत सी सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। द्वार के दोनों ओर दीवारों के ऊपरी भाग पर सुंदर रूपावलियां हैं। वहां से छत प्रारंभ होती है। वहां बुद्ध की मूर्तियां पंक्ति में बनी हुई हैं। इनमें 4 ध्यानी बुद्धों अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ और अमोघ सिद्ध की मूर्तियां हैं। मंदिर के भीतरी भाग की पीछे की दीवार में आसन पीठ बने हैं, जिनमें कभी मूर्तियां प्रतिष्ठापित रही होंगी, पर अब उनका पता नहीं है। पिछली दीवार के साथ मूर्ति के लिए जिस सिंहासन का निर्माण कराया गया था वह अब भी विद्यमान है, पर उस पर तारा देवी की जो मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी वह अब नहीं है। चंडी सरी। चंडी कालसन से आधा मील उत्तर में चंडी सरी का मंदिर है, जो अब अत्यंत ध्वस्त दशा में है। इसके प्रस्तर खंडों तथा मलबे को लोग सदियों से नए मकान बनाने के लिए प्रयुक्त करते रहे हैं। मूल दशा में यह एक दोमोंचली इमारत थी, जिसकी लंबाई 57 फीट और चौड़ाई 33 फीट थी। नीचे की मंजिल में मंदिर था और ऊपर की मंजिल को निवास के लिए विहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। दोनों मंजिलों पर 3-3 सिंहासन थे, जिन पर बौद्ध मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई थी। मंदिर को सब ओर से विविध कलात्मक मूर्तियों द्वारा विभूषित किया गया था। जो मूर्तियां अवशेष बच रही हैं वे अत्यंत सुंदर हैं। चंडी सेबू। चंडी सरी के पूर्व में चंडी सेबू के मंदिर है। यहाँ 782 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है, जिससे इन मंदिरों का शैलेंद्र के प्रारंभिक काल में निर्मित होना सूचित होता है। यहाँ कोई एक मंदिर न होकर बहुत से मंदिर हैं, जो एक लंबे चौड़े दायरे में बने हैं। 600 फीट लंबे और 540 फीट चौड़े एक सुविस्तृत आंगन के चारों ओर 2 पंक्तियों में मंदिर बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 168 है। आंगन के मध्य में मुख्य मंदिर है, जो 2 अन्य पंक्तियों में बने 72 मंदिरों से घिरा हुआ है। इस प्रकार वहां कुल मिलाकर 240 मंदिर थे, जिनसे बीच का मुख्य मंदिर घिरा हुआ था। इनके अतिरिक्त 10 अन्य मंदिरों के भी चिन्ह यहाँ विद्यमान हैं, जो मंदिरों की भीतरी और बाहरी पंक्तियों के बीच में हैं। यदि इन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाए तो चंडी सेबू में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त 250 अन्य मंदिर थे। मुख्य मंदिर 40 वर्ग गज के एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इसके चारों ओर 4 द्वार हैं। मंदिर की दीवारों को अलंकृत करने के लिए पत्र पुष्पों, पशु पक्षियों तथा अन्य आकृतियों का प्रयोग किया गया है। बीच का मंदिर बहुत ऊंचा है और उसके दोनों ओर से मंदिरों की ऊंचाई निरंतर कम होती गई है। इस कारण इस मंदिर समूह ने एक अत्यंत भव्य तथा आकर्षक रूप प्राप्त कर लिया है। ये सब मंदिर किसी एक ही व्यक्ति द्वारा बनवाए हुए नहीं है। एक मंदिर पर लिखा है महाप्रतय सन रड गुड तिड, जिसका अर्थ है रड गुड तिड का दान। इसी प्रकार के लेख के अन्य मंदिरों पर भी पाए गए हैं, जिनसे उनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बनाया जाना सूचित होता है। एक सदी से कुछ पहले एक दर्शक ने चंडी सेबू के विषय में लिखा था कि इसकी कला बहुत ही सुरुचिपूर्ण, कोमल एवं परिमार्जित है। उस समय जो मंदिर मूर्तियां व अलंकरण वहां विद्यमान थे वे अब प्रायः ध्वस्त व लुप्त हो चुके हैं, पर जो अभी शेष बचे हैं वे चंडी सेबू के महत्व को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। चंडी कालसन, चंडी सरी और चंडू सेबू के ये मंदिर मध्य जावा की प्रबन्नन घाटी में है। चंडी मेंदूत और चंडी पवान। प्रबन्नन की घाटी के दक्षिण पूर्व और दियंग पठार के उत्तर पश्चिम में केदू का मैदान है, जहाँ बहुत से पुराने मंदिरों के ध्वंसावशेष विद्यमान हैं। ये भी 8वीं सदी के लगभग के हैं और ये बौद्ध और पौराणिक दोनों धर्मों के साथ संबंध रखते हैं। यद्यपि बहुत से मंदिर ध्वस्त दशा में हैं, पर वहाँ चंडी मेंदू तथा चंडी पवान के मंदिर इस समय भी पर्याप्त रूप से अच्छी दशा में हैं। चंडी मेंदूत का मंदिर 90 फीट लंबे, 78 फीट चौड़े और 66 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। वह चौकोर है और 15 वर्ग गज उसका क्षेत्र है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्ति पंक्तियां हैं, जिनमें मध्य की मूर्ति पंक्ति के उत्तर पूर्व में पद्मासना अष्टभुजा देवी की मूर्ति है। इस देवी के दोनों ओर प्रभा मंडित दो मनुष्य मूर्तियां हैं, जिनके एक हाथ में कमल और दूसरे में चक्र है। देवी के दाएं वाले हाथों में शंख, वज्र, विल्व तथा माला है और बाएं वाले हाथ में परशु, अंकुश, पुस्तक और कोई गोल वस्तु है। इस मूर्ति पंक्ति के सामने की ओर पद्मशर में 3 पद्मासन उठते हुए दिखाए गए हैं, जिनमें बीच वाला अन्य 2 से ऊंचा है। इस ऊंचे पद्मासन पर एक देवी आसीन है, जिसके 2 हाथ ध्यान मुद्रा में गोद में पड़े हैं और शेष 2 में से एक में माला और दूसरे में पुस्तक है। पार्श्ववर्ती 2 पद्मासनों पर 2 अन्य मूर्तियां हैं। मेंदूत के इस मंदिर में बुद्ध और बोधिसत्वों की भी बहुत सी मूर्तियां हैं। इनमें एक पत्थर से बनी 10 फीट ऊंची बुद्ध मूर्ति है, जिसके पाद पीठ में एक चक्र के दोनों ओर 2 मृग बने हैं। इस मूर्ति में बुद्ध को धर्म चक्र परिवर्तन करते हुए दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्तियां साधारण चीवर में बिना किसी सजावट के हैं, पर अवलोकितेश्वर और मंजूश्री की मूर्तियों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत रूप से बनाया गया है। चंडी मेंदूत की ये 3 मूर्तियां दक्षिण पूर्वी एशिया की मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में भी बुद्ध की इतनी सुंदर मूर्तियां गुप्त युग में ही बनी थी। मेंदूत मंदिर के चारों ओर एक विशाल आंगन है, जो 360 फीट लंबा और 165 फीट चौड़ा है। किसी समय इसमें भी उसी प्रकार से अनेक मंदिर रहे होंगे जैसे कि चंडी सेबू में है। चंडी मेंदूत से 1257 गज दूर चंडी पवान का मंदिर है। यह एक छोटी पर अत्यंत सुंदर इमारत है। यह भी पहले अनेक रूपावलियों तथा मूर्ति पंक्तियों से विभूषित था, पर अब इसका बहुत सा भाग ध्वस्त हो चुका है। इसके समीप अन्य भी अनेक मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। बरोबदूर मेंदूत और पावन के मंदिरों को मिलाने वाली रेखा को यदि सीधे 1913 गज और आगे बढ़ाया जाए तो बरोबदूर का महाचैत आ जाता है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना है और इससे केदू के हरे भरे मैदान तथा उसके चारों ओर के पहाड़ों का अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। संसार के किसी भी भाग में कला को अपनी अभिव्यक्ति के लिए इतना सुंदर प्राकृतिक स्थान नहीं मिला। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह स्थान जितना मनोरम है, वास्तुकला ने उससे भी बढ़कर अपना चमत्कार यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ महाचैत्य 9 चबूतरों या चक्करों से मिलकर बना है, जिनमें से प्रत्येक ऊपर का चक्कर अपने से नीचे वाले चक्कर की तुलना में थोड़ा भीतर की ओर सिमटा हुआ है। सबसे ऊपरले चक्कर के ऊपर घंटाकार चैत्य, 9 चक्करों या चबूतरों में सबसे नीचे ले 6 सीधी रेखा के कोणों वाले हैं। वे गोलाकार न होकर समकोण चतुर्भुजों के रूप में हैं। ऊपर के 3 चक्कर गोलाकार हैं, सबसे निचले चक्कर की लंबाई 400 फीट है और सबसे ऊपर वाले की 90 फीट। नीचे के 5 चक्कर भीतर की ओर एक बाड़ या दीवार से इस तरह घिरे हुए हैं कि एक चक्कर और उससे ऊपर वाले चक्कर के बीच में एक गलियारा बना गया है। सबसे ऊपर के 3 चक्कर स्तूपों से घिरे हुए हैं और इन स्तूपों में छिद्र वाली छत के नीचे बुद्ध की एक एक मूर्ति बनी हुई है। महाचैत्य के विविध चक्करों या चबूतरों को दीवारों पर रूपावलियों अंकित हैं और उनके बीच बीच में गवाक्ष बने हैं, जिनमें से प्रत्येक में ध्यानी बुद्धों की एक एक मूर्ति प्रतिष्ठापित है। सारे महाचैत्य में ऐसी 432 मूर्तियां हैं। ध्यानी बुद्धों की मूर्तियों को गवाक्षों में स्थापित करते हुए यह ध्यान में रखा गया है कि अक्षोभ्य की मूर्तियाँ पूर्व की ओर के गवाक्षों में हो, रत्न संभव की दक्षिण की ओर के गवाक्षों में, अभिताभ की पश्चिम की ओर के गवाक्षों में और अमोघ सिद्धि की उत्तर वाले गवाक्षों में। 5वें चक्कर के गवाक्षों में सभी मूर्तियां वैरोचन की हैं। चक्करों की दीवारों पर जो रूप वालियां हैं वे सब भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, पर मूर्तिकला की दृष्टि से सब उत्कृष्ट हैं। नीचे के 5 चक्करों में भीतर की ओर बनाई गई बाट के कारण जो गलियारे बन गए हैं वे प्रायः 6.5 फीट चौड़े, 8 फीट से 12.5 फीट तक ऊंचे हैं। इनमें बनी रूपावलियों में बुद्ध की जीवनी को प्रस्तरों पर उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार जो चित्र इस महाचैत्य में अंकित है उन्हें यदि एक साथ लगा दिया जाए तो उनकी लंबाई 3.5 मील तक हो जाती है। इन चित्रों में नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस, काल, मकर, कल्पवृक्ष, परिजात, हंस तथा कितने ही अन्य पशु पक्षी अंकित हैं, जिन्हें बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाले किसी कथानक के प्रसंग में प्रदर्शित कर दिया गया है। गलियारों के दोनों पार्श्वों में ऊपर के चक्कर में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनके ऊपर मेहराब बने हैं। मेहराबों के बीच में कीर्ति मुख है, जिनसे फूल लटक रहे हैं। द्वारों के ऊपर मूर्ति गवाक्षों की तरह मूर्ति शिखर बने हैं। द्वार अत्यंत कलात्मक ढंग से अलंकृत हैं और उन्हें इस प्रकार से बनाया गया है कि उनमें से किसी एक से भी सभी द्वारा तथा सीढ़ियों का सुंदर दृश्य सम्मुख आ जाता है। वर्षा के पानी के निकलने के लिए प्रत्येक चक्कर में 20-20 प्रणालिकाएं बनी हुई हैं। ऊपर के 3 गोलाकारों चक्करों को रूपावलियों से विभूषित नहीं किया गया है। इन 3 चक्करों के व्यास क्रमशः 171, 126 और 90 फीट है और इनके साथ साथ जो स्तूप बनाए गए हैं उनकी संख्या क्रमशः 32, 24 और 16 है। इन स्तूपों की बनावट प्रायः एक सदृश है। बरोबदूर के महाचैत्य के गलियारों में सब मिलाकर 1500 चित्र फलक या रूपवालियां हैं। इन सब का संबंध बुद्ध के जीवन वृत्त या उनके पूर्व जन्मों के कथानकों से है। इनमें कहीं सर्वसाधारण के दैनिक जीवन के चित्र हैं, जैसे विविध प्राणियों के वध व बंधन के दृश्य, कहीं नरक की भीषणता और स्वर्ग का आनंद चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों के नीचे छोटे छोटे लेख भी हैं। सबसे निचले गलियारों की ऊपरी पंक्ति में बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार बुद्ध का जीवन अंकित है और निचली पंक्ति में जातकों की कथाएं। अन्य पंक्तियों के चित्रों का निर्माण भी किन्हीं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नहीं किया गया है। बरोबदूर के इस महाचैत्य के काल के संबंध में विद्वानों का यह मत अभिप्रेत है कि इसका निर्माण 750 से 850 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस समय में जावा पर प्रतापी शैलेंद्र सम्राटों का शासन था और उन्हीं के संरक्षण में इस महाचैत्य का निर्माण हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के प्राचीन अवशेषों में यही सबसे महत्वपूर्ण एवं विशाल है और इसे संसार के आश्चर्यों में गिना जाता है। चंडीलर जोंग्रंड प्रम्बनन की जिस घाटी में चंडी कालसन, चंडी सरी और चंडी सेवू के बौद्ध मंदिर हैं, उसी में चंडीलर जोंग्रंग के मंदिर भी हैं जो पौराणिक देवी देवताओं के हैं। यहाँ 8 मुख्य मंदिर हैं। 3-3 मंदिर 2 पंक्तियों में बने हैं और इन पंक्तियों के बीच में 2 मंदिर विद्यमान हैं। इन मुख्य मंदिरों के चारों और एक दीवार बनी है। इस छोटे छोटे मंदिरों की 3 पंक्तियां ने घेरा हुआ है। इस प्रकार लर जोंग्रंग में जो बहुत से मंदिर बने हुए हैं उनकी कुल संख्या 156 है। 8 मुख्य मंदिरों में जो 3 पश्चिम की ओर की पंक्ति में बने हैं उनमें बीच का मंदिर सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। इसमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इसका आधार भाग 90 फीट लंबा और 10 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर एक चबूतरा बना है जिसके ऊपर मंदिर स्थित है। मंदिर के चारों ओर 7 फीट चौड़ा प्रति दक्षिण पथ है। मंदिर चबूतरा और उसका जंगला बहुत सी रूपावलियों द्वारा अलंकृत है जिनमें रामायण की कथा को अंकित किया गया है। शिव मंदिर की रूपावलियों में लंका पर अभियान तक के दृश्य पाए जाते हैं और आगे की कथा ब्रह्मा के मंदिर की रूपावलियों में अंकित की गई है। मध्यवर्ती शिव मंदिर के दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु के मंदिर हैं। विष्णु के मंदिर में कृष्ण लीला संबंधी चित्र भी उत्कीर्ण हैं। लर जोंग्रंग के ये मंदिर कला, सौंदर्य तथा विशालता की दृष्टि से बरोबदूर के प्राय समकक्ष हैं। रामायण आदि के जो चित्र इनमें अंकित हैं कला और सजीवता में वे बरोबदूर के चित्रों से हीन न होकर उत्कृष्ट ही हैं। चंडी लर जोंग्रंग के इन मंदिरों का निर्माण काल 9वीं सदी में माना जाता है। प्रम्बनन के क्षेत्र में ही चंडी बनोन का मंदिर भी है जिसमें शिव, अगस्त्य और विष्णु की मूर्तियां विद्यमान हैं। सौंदर्य और कला में ये मूर्तियां अनुपम हैं। पूर्वी जावा के मंदिर, जिन मंदिरों का उल्लेख हमने ऊपर किया है वे मध्य जावा के हैं। 10वीं सदी के द्वितीय चरण में पूर्वी जावा का उत्कर्ष प्रारंभ हो गया था और इस समय से वहाँ की राजशक्ति वहीं केंद्रित होने लग गई थी। इसलिए 10वीं सदी से पूर्व जावा में भी अनेक मंदिरों व चैत्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जिनमें से कुछ वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। ये प्रायः 13वीं सदी और उसके बाद के हैं और इनमें से अनेक दिवंगत राजाओं की समाधि के रूप में बनाए गए हैं। इन मंदिरों में चंडी किदल, चंडी जगो, चंडी जवी और चंडी सिंहसारी उल्लेखनीय है। इनमें चंडी जगो का विशेष महत्व है। उसका निर्माण सिंहसारी के राजा विष्णुवर्धन की समाधि के रूप में किया गया था। विष्णुवर्धन की मृत्यु 1268 में ईस्वी में हुई थी, अतः इस मंदिर की 13वीं सदी के मध्य भाग का माना जा सकता है। इस मंदिर में जो मूर्ति है वह बुद्ध की है, पर उसकी मुखाकृति विष्णुवर्धन के मुख की अनुकृति में बनाई गई है। यह मंदिर 3 चबूतरों पर बना है और उसमें ऊपर के चबूतरे नीचे वाले चबूतरे से छोटे होते गए हैं। चंडी कीदल का निर्माण राजा अनुष्पति की समाधि के रूप में किया गया था। इस राजा की मृत्यु 1248 ईस्वी में हुई थी। इस युग में जावा में बौद्ध और पौराणिक धर्मों में समन्वय की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी और बुद्ध तथा शिव में अभेद प्रतिपादित किया जाने लगा था। इसीलिए पूर्वी जावा के इन मंदिरों में भी बौद्ध और पौराणिक धर्मों में समन्वय के प्रमाण पाए जाते हैं। चंडी जगो के बौद्ध मंदिर में कृष्ण का चरित्र भी अंकित है और चंडी जावा के मंदिर में शिव की मूर्ति के ऊपर बुद्ध की भी मूर्ति है। पूर्वी जावा के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध पनरत्न में विद्यमान वे मंदिर हैं जिनका संबंध पौराणिक हिंदू धर्म के साथ है। जिस क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है उसकी लंबाई 588 फीट और चौड़ाई 195 फीट है। इस क्षेत्र के चारों ओर एक दीवार बनी हुई है जिसका मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में था। मुख्य मंदिर का अब केवल चबूतरा ही बचा है। मंदिर नष्ट हो चुका है, पर चबूतरे के सामने एक छोटा मंदिर अब भी विद्यमान है जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। मुख्य मंदिर का जो निचला भाग शेष है उस पर अनेक रूपावलियां उत्कीर्ण है जिनमें रामायण और कृष्णायन से संबंध चित्र अंकित है। पन तरन के मंदिर न किसी एक समय में बने थे और न उन्हें किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही बनाया गया था। 13वीं से 15वीं सदियों तक उनका निर्माण होता रहा था। कला की दृष्टि से पूर्वी जावा के मंदिर मध्य जावा के मंदिरों की तुलना में हीन है। बरोबदूर में एक बड़े मध्यवर्ती मंदिर के दोनों और जो बहुत से मंदिर बनाए गए थे वे आकार में निरंतर छोटे छोटे होते गए। इस कारण मंदिरों की इस श्रृंखला में एक अनुपम सौंदर्य आ गया है। यही बात चंडी सेवू और चंडी लर जोग्रंग के मंदिरों के विषय में भी कही जा सकती है, पर इस प्रकार का सौंदर्य पूर्वी जावा के मंदिरों में नहीं पाया जाता। पूर्वी जावा के मंदिरों में जो रूपावलियां व चित्र फलक उत्कीर्ण हैं उनकी आकृतियां प्रायः बेडौल और भद्दी हैं। उनमें सजीवता का भी अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य जावा के मंदिरों और मूर्तियों का शिल्प प्रधानतया भारत की शिल्पकला के अनुरूप था, पर पूर्वी जावा में स्थानीय तत्व प्रबल होने लगे जिनके कारण वहाँ के शिल्प पर भारतीय प्रभाव में कमी आती गई। पर पूर्वी जावा में भी देवी मूर्तियां भारतीय कला के अनुरूप ही बनती रहीं। यही कारण है कि वहां से प्राप्त अनेक देव मूर्तियां कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं और उनमें अनुपम सौंदर्य भी है। इनमें एक मूर्ति प्रज्ञा पारमिता की है जिसके मुखमंडल पर अलौकिक सात्विक तेज है। पूर्वी जावा की परंपरा के अनुसार इसकी मुखाकृति शायद रानी डेडस के मुख की अनुकृति में बनाई गई थी। डेडस ने सिंहसारी राज्य के संस्थापक अंग्रोक राजस से विवाह किया था और पूर्वी जावा के इस राज्य में उसका स्थान बड़े महत्व का था। राजा एलंग की मुखाकृति के अनुसार निर्मित विष्णु की मूर्ति और राजा कृतराजस की मुखाकृति के अनुसार बनाई गई हरिहर की मूर्ति पूर्वी जावा की मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। विविध पौराणिक देवी देवताओं और बुद्ध ध्यानी बुद्धियों तथा बोधिसत्वों की जो बहुत सी मूर्तियां जावा से उपलब्ध हुई हैं उनका यहाँ परिचय दे सकना संभव नहीं है। इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि ये प्रायः भारतीय मूर्ति कला के अनुसार निर्मित हैं और कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हैं। चौथा, शासन पद्धति। जावा की शासन संस्थाओं और राजनीतिक कवि विषयक मान्यताओं पर भी भारत की पूरी पूरी छाप है। वहाँ 3 ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं जिनसे जावा की प्राचीन शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला, कामंदक। इस ग्रंथ में भगवान कामंदक द्वारा अपने शिष्य को राजा के कर्तव्य को संबंध में प्रवचन किया गया है। रामायण और महाभारत के पात्रों को लेकर राजनीति विषयक मंतव्य निरूपित किए गए हैं और युधिष्ठिर को एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजशास्त्र विषयक भारतीय ग्रंथों में भी आचार्य कामंदक का नाम आता है, पर उसका नीति ग्रंथ यहाँ उपलब्ध नहीं था। वह बाली द्वीप से प्राप्त हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत में है और कौटिल्य और सात के समान ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय राज्यों में कामंदक के नीति शास्त्र का बहुत प्रचार था और राज्य के शासन के लिए उसी का अनुसरण किया जाता था। दूसरा, इंद्रलोक, यह भी राजशास्त्र विषय ग्रंथ है और इसमें भगवान इंद्रलोक ने अपने विशिष्य कुमार यज्ञ को राजनीति का उपदेश दिया है। तीसरा, नीति प्रभ, इसमें शत्रुओं के प्रति राजा के उन कर्तव्यों का विवरण है जिनका प्रतिपादन विष्णु द्वारा व्यास के लिए किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में जावा तथा समीपवर्ती अन्य द्वीपों में भारत के अन्य राजशास्त्र प्रणेता आचार्यों के ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन हुआ करता था और वहाँ के राजा उनमें प्रतिपादित उपायों का अनुसरण भी किया करते हैं थे। राजा एलंग के प्रसिद्ध अभिलेख में वैष्णु गुप्त उपायों को प्रयोग का उल्लेख है। निज बला निगृहितो वैष्णु गुप्त तय रूपाय सपादी विजयनामा पार्थिवो धाम गच्छत। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा प्रतिपादित उपायों को जावा में भी प्रयुक्त किया जाता था। भारत के समान जावा में भी राम को आदर्श राजा के रूप में स्वीकार किया गया था और संपूर्ण प्रजा में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ही उसे राजा के पद का अधिकारी माना जाता था। श्रेष्ठ प्रज्ञासु सकलासु कलाभिराम रामो यथा दशरथा स्वसुगुण करियान। भारत में पाल वंश के राजा श्री गोपाल के संबंध में यह अनुश्रुति है कि जब मातस्य न्याय के कारण प्रजा पीड़ित हो गई थी तो उस द्वारा श्री गोपाल को राजपद प्रदान किया गया था ताकि अव्यवस्था दूर होकर शांति तथा व्यवस्था स्थापित हो। इसी प्रकार की अनुश्रुति जावा में एलंग के संबंध में भी थी। इसके अभिलेख में लिखा है, आगत्य प्राण तैजन्य दिज्वरा सास्वसम पाभिथ्य श्री लोकेश्वर मीरलंग निपतिपाही तद्दुंताम छितौ। इलंग भी जनता की रक्षा के लिए ही एलंग भी जनता की रक्षा के लिए ही राजा बना था और वह भी जब द्विज वरों ने प्रणत होकर इसके लिए उससे प्रार्थना की थी। प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र राज्यों की ही सत्ता नहीं थी, यहाँ ऐसे भी राज्य थे जिनमें गणतंत्र पद्धति के अनुसार शासन होता था, पर दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी भारतीय राज्य राजतंत्र थे और उनके शासन में राजा का प्रमुख स्थान था। उस पर नियंत्रण रखने के लिए किन्हीं ऐसे सभाओं की सत्ता नहीं थी जिनमें जनता प्रतिनिधि सम्मिलित होते हों। मनु द्वारा राजा को दैवी प्रतिपादित किया गया है। राजा को दैवी मानने की यह परंपरा जावा में भी गई और वहां इसने एक नया रूप प्राप्त किया। राजा के मृत्यु के पश्चात उसके सम्मान में विष्णु बुद्ध आदि की जो मूर्तियां प्रतिष्ठापित की जाती थीं, उनके मुखाकृति को राजा के रूप मुख के अनुसार बनाया जाने लगा और इस प्रकार दिवंगत राजा की देव रूप में पूजा की जाने लगी। इलंग की मुखाकृति को लेकर विष्णु की मूर्ति बनाई गई थी और रानी ढेडस की मुखाकृति के अनुसार देवी प्रज्ञा पारमिता की। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण पिछले प्रकरण में दिए जा चुके हैं। जावा में राजाओं के लिए प्रायः भट्टार प्रभु विरुद्ध का प्रयोग किया जाता था जो उसके प्रति दैवी भावना का संकेत करता है, पर भारत के समान जावा के राजा भी पूर्णतया स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके लिए शास्त्र मर्यादा का पालन करना आवश्यक समझा जाता था और राजकीय नीति के निर्धारण के लिए तर्क वितर्क में तत्पर मंत्री लोग उन्हें सदा परामर्श देते रहते थे। मंत्रालोचन तत्परय रहस्य संभाषितो मंत्री भी। राजा को धर्म के अनुसार ही शासन करना है, यह विचार जावा में भी सुदृढ़ रूप से विद्यमान था। एलंग के विलेख में धर्म द्वारा भुवन की रक्षा का स्पष्ट रूप से उल्लेख है, यस्मिन जीवाति राज्ञी रक्षति भुवनम धर्मेण सिद्ध्यन्ति ते। संभवतः भारत के समान जावा में भी पौर सभाओं की सत्ता थी। एलंग के विलेख में इसका भी संकेत विद्यमान है। वहां लिखा है, साधु नामपति पातु पौरस समिति धर्म्या गतिर मंत्रिणाम। और समिति पूर्व को उसी प्रकार की संस्था होनी चाहिए जैसा कि भारत में पौर सभाएं थी। जावा में राज का शासन प्रायः उसी ढंग का था जैसा कि प्राचीन काल में भारतीय राज्यों का था। शासन के लिए राज को अनेक प्रदेशों या प्रांतों में विभक्त किया जाता था और उनके शासकों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसमें ग्राम सभा की भी सत्ता हुआ करती थी। राजा के अधीन जो विविध राज पदाधिकारी शासन कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे, अभिलेखों में बहुधा उनका उल्लेख हुआ है। इसमें सबसे मुख्यमंत्री सेनापति और सेनापति सर्वजल जल सेनापति थे। मंत्री भी तीन प्रकार के थे, मंत्री हीनो, मंत्री सिरिकन और मंत्री हलु। इनके कार्यों में क्या भेद था यह स्पष्ट नहीं है। मंत्रियों के नीचे की स्थिति के राज पदाधिकारी रक्कयन होते थे, जिनका राज्य के शासन में महत्वपूर्ण स्थान था। धर्माधिकरण संज्ञक राज पदाधिकारियों का उल्लेख भी जावा के अभिलेखों में आया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के धर्मस्थ के समान धर्माधिकरण का संबंध भी न्याय कार्य के साथ था। धर्माध्यक्ष संज्ञक जिन राज कर्मचारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, उनका कार्य मंदिरों, चैत्यों व अन्य धर्मस्थानों का प्रबंध करना था। पौराणिक और बौद्ध धर्मस्थानों के प्रबंध के लिए पृथक पृथक धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। पांचवा, सामाजिक जीवन। भारत के सामाजिक जीवन में वर्णाश्रम धर्म का प्रमुख स्थान है। हिंदू समाज का संगठन चातुर्वर्ण पर आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में समाज का विभाजन कर यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मनुष्य अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध भारतीय राज्यों का सामाजिक जीवन भी चातुर्वर्ण पर आधारित था। जावा के पुराने साहित्य में स्थान स्थान पर ब्राह्मण आदि चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार भारत में ब्राह्मणों का कार्य यज्ञादि धार्मिक कृत्य कराना था, वैसे ही जावा में भी था। वहां के कितने ही अभिलेखों में ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराने और उन्हें दान दक्षिणा दिए जाने का वर्णन मिलता है। बाली द्वीप में अब तक भी हिंदू धर्म की सत्ता है और वहां के हिंदू समाज का संगठन प्रायः उसी प्रकार का है जैसा कि पहले जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलाया आदि सर्वत्र था। बाली के वर्तमान समाज संगठन से दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों के पुराने समाज का भलीभांति अनुमान किया जा सकता है। वहां के समाज में अब भी चार वर्ण हैं, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वहां द्विजाति कहते हैं और शूद्र को एक जाति। अनुलोम विवाह वहां अनुमत है, जिसके अनुसार उच्च वर्ण का पुरुष अपने से हीन वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है, पर प्रतिलोम विवाह को बहुत बुरा माना जाता है, जिसके कारण कोई पुरुष अपने से उच्चतर वर्ण का स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। संकर विवाहों की संतान का वही वर्ण होता है जो पिता का हो। ब्राह्मणों के वहाँ दो वर्ग हैं, शैव ब्राह्मण और बौद्ध ब्राह्मण। दक्षिण पूर्वी एशिया में पौराणिक और बौद्ध धर्मों में जो समन्वय हो गया था, उसके कारण बौद्ध धर्म में भी पौराणिक देवी देवताओं के उपासकों के धर्म में विलीन हो गया था और बौद्ध स्थविरों और पुरोहितों को भी ब्राह्मण माने जाना लगा था। बाली में क्षत्रियों को देव भी कहा जाता है और वैश्यों को आर्य भी। वहाँ शूद्रों को अछूत नहीं समझा जाता था, वे प्रायः खेती तथा विविध शिल्पों द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। बाली में आधुनिक समय तक भी सती की प्रथा रही है, यद्यपि केवल राजघरानों तथा कतिपय अन्य संभ्रांत कुलों में ही इस प्रथा का अनुसरण किया जाता था। दास प्रथा भी वहाँ विद्यमान था, यद्यपि कुछ दास जन्म के कारण भी होते थे, पर बहुसंख्यक दास ऐसे होते थे जिन्होंने की कर्ज अदा न कर सकने या निर्धनता के कारण कुछ समय के लिए दास वृत्ति स्वीकार कर ली होती थी। युद्ध में बंदी हुए व्यक्ति भी दास बना लिए जाते थे। बाली की यह दास प्रथा ठीक वैसी ही है जैसी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के दास कल्प प्रकरण में वर्णित है। दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय राज्यों में स्त्रियों की स्थिति हीन नहीं मानी जाती थी। जावा के अनेक अभिलेखों में उन स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो वहां के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी और या जो महामंत्री सदृश उच्च पदों पर नियुक्त थी। पूर्वी जावा के प्रतापी राजा श्री ईशान तुंगदेव के बाद उसकी पुत्री ईशान तुंग विजया राज सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। इसी प्रकार राजा मंकुट वंशवर्धन के बाद उसकी पुत्री गुणप्रिया धर्मपत्री ने राज्याधिकार प्राप्त किया था। मतपहित के राजा जयनगर के पश्चात गायत्री राजपत्नी को राज सिंहासन प्रदान किया गया था। यद्यपि वह भिष्णु बन गई चुकी थी, उसके शासनकाल में उसका पुत्री त्रिभुवनो तुंग देवी जय विष्णु वर्धनी शासन का संचालन करती रही। इस प्रकार के कितने ही अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। जावा के विलेखों में कितनी ही स्त्रियों को महामंत्री के पद पर नियुक्त बताया गया है। पर्दा की प्रथा इन देशों में प्रचलित नहीं थी। बाली की स्त्रियां आजकल भी पर्दा नहीं करती हैं। जावा के पुराने साहित्य में अनेक स्थलों पर स्वयंवर का उल्लेख मिलता है, जिससे विवाह के मामले में स्त्रियों की स्वतंत्रता सूचित होती है। स्त्रियों की स्थिति के संबंध में एलंग के अभिलेख की यह बात महत्व की है कि उसकी राज्यसभा में मंत्रियों तथा वीरों के साथ ललनाओं स्त्रियों की उपस्थिति भी लिखी गई है। भास्वर दिल्भ ललनान्वितो निश्वते वीर परितो भृजम। जावा में उपलब्ध मूर्तियों रूपावलियों तथा चित्र फलकों से वहाँ के पुराने निवासियों की वेशभूषा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। भारत के समान जावा में भी अधो वस्त्र और उत्तरीय प्रधान परिधान थे। पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहना करते थे और अपने शरीर को अलंकरणों से विभूषित करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनके भोजन में चावल का प्रधान स्थान था। तांबूल का सेवन भी वहाँ किया जाता था और विविध प्रकार की मदिराएं भी प्रयोग में लाई जाती थी। दूत क्रीड़ा शतरंज तथा कुक्कुटों की लड़ाई आमोद प्रमोद के साधन थे। संगीत और नाटकों द्वारा भी वहाँ के लोग मनोरंजन में तत्पर रहते थे। जावा की रूपावलियों में वीणा मृदंग बांसुरी और सितार बजती हुई तथा नृत्य करती हुई स्त्रियों के चित्र भी विद्यमान है। छाया नाटकों का वहाँ बहुत चलन था। इन्हें वयांग कहते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा बाली तथा मलाया आदि में अब तक भी इनका बहुत चलन है। नाटकों के वहाँ अन्य भी अनेक प्रकार थे और कठपुतली के खेलों का भी वहाँ रिवाज था। मृतक की अंत्येष्टि क्रिया के लिए शव को जलाया जाता था, यद्यपि विशेष दशाओं में जल प्रवाह की पद्धति भी प्रयुक्त की जाती थी। अंत्येष्टि क्रिया मत्पदंड पंडित कराया करते थे। अस्थियों को जल में प्रवाहित करने की भी वहाँ प्रथा थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्राचीन राज्यों की स्थिति द्वीपों में थी, अतः स्वाभाविक रूप से उनका आर्थिक जीवन सामुद्रिक व्यापार तथा नौकानयन पर आधारित था। इस क्षेत्र के प्रधान बंदरगाह श्री विजय और कटाह केड़ा थे, जहाँ दूर दूर के व्यापारी अपना पन्ने लेकर आया करते थे। यहाँ से अन्य देशों में जाने वाले पन्ने में मसालों सोना चांदी मोती कपूर चंदन इलायची आदि दांत अंगूरू और मूंगा प्रधान थे। जावा कृषि प्रधान देश था और वहाँ का चावल अन्य देशों में भी बिकने के लिए जाया करता था। मुद्रा पद्धति भी वहाँ विकसित दशा में थी। जावा से बहुत से सिक्के मिले हैं जो तांबी और चांदी के हैं। ये वहाँ के पुराने सिक्के हैं।